व्यर्थ जाने से इनको बचा लो
प्रभु, चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो।
ओम शांति। हम फिर से इस डायमंड हॉल में मिल रहे हैं। अभी हमारे बीच ईवी गिरीश भाई जी पधारे हैं। गिरीश भाई जी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग एंड फाइनेंस में एमबीए प्राप्त किया है और उसके साथ कई वर्षों तक प्रोफेसर के रूप में सेवाएं की है। गिरीश भाई जी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है और मैनेजमेंट ट्रेनर है। हमने अनुभव किया है उनके लेक्चर में बहुत डीप गहन बातें, बहुत रमणीकता से वह हमें बताते हैं, जो हमको मुश्किल लगता है कि यह कैसे पॉसिबल है, पर उनकी रमणीकता ऐसी रहती है जो हमको बहुत इजी लगता है। गिरीश भाई पिछले 21 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। उनको स्पिरिचुअलिटी और सामाजिक सेवा में बहुत रुचि है, बहुत रुचि से हर एक प्रकार की सेवा करते, बहुत डेडिकेटेड है। गिरीश भाई ने कई कंपनियों में और ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सेवाएं दी है, अपने प्रोग्राम किए हैं, जैसे इसरो, नाबार्ड, इंडियन आर्मी, लार्सन एंड टुब्रो, टैप्स, ऐसे अनेक ऑफिसेस में जाकर के उन्होंने सेवाएं प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि गिरीश भाई हमारे बीच में है और बहुत सुंदर सब्जेक्ट लेकर आए हैं। गिरीश भाई, रियलिटी इन स्पिरिचुअलिटी। गिरीश भाई का हम स्वागत करते हैं तिलक से और तुलसी पोर्ट से। गिरीश भाई,
ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। ये प्यार है आपका? इसमें तो प्यार ही नहीं है जी, हाँ एक में वहां थोड़ा ज्यादा प्यार है, माताओं का तो बिल्कुल भी प्यार नहीं नजर आ रहा है। प्यार से कहिए ओम शांति, मतलब मांग के प्यार लेना पड़ रहा है, ये भी क्या समय आ गया है। थोड़ा मुस्कुराकर खुशी से कहिए ओम शांति, वेरी गुड। उमंग उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति, बहुत अच्छा। नमस्ते, हाथ कौन जोड़ेगा, घर वाले? हाथ जोड़ के कहिए और मुस्कुराते हुए कहिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही रिपीट ही करते रहो जी, थोड़ा तो अटेंशन में भी रहिए। अभी मॉर्निंग चल रहा है क्या? तो हाँ, तो थोड़ा होश नींद से उठ के, हाँ मुझे पता है थोड़ा नींद किया होगा क्या, सुबह सुबह 4 बजे से हम इतना सुना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा नींद की थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन जागृत अवस्था में खुशी से कहिए गुड इवनिंग, इवनिंग गुड है। बच्चे का तो बहुत ज्यादा गुड इवनिंग, उसकी आवाज यहां सुनाई दे रही है। माताओं का इवनिंग गुड है क्यों? अच्छा, भाइयों का इवनिंग गुड है, बहुत गुड है। माताओं का गुड हो गया तो भाइयों का तो ऑटोमेटिकली गुड हो जाता है, ठीक है ना? सारा भाई लोग, आप लोग क्यों ताली बजा रहे हो? ये इतने पीड़ित हैं, बोले सही कहा आपने, ये ठीक है तो हम ठीक हैं जी। चलिए ठीक है, माताओं का भाइयों का मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, पिछले एक दो कल से आए हैं ना आप लोग, गुड ही गुड है। क्योंकि ऐसे तो ये बहुत सुंदर स्थान है, दिव्य स्थान है, ईश्वरीय स्थान, इतने अच्छे अच्छे क्लासेस हो रहे हैं, वो सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोने पे सुहागा इसीलिए है क्योंकि खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, किचन नहीं जाना पड़ रहा है। हाँ या ना? हाँ बोल रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था उसमें भी हाँ बोल देते। और भाइयों को ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है, यहाँ मस्त आराम से निश्चिंत हो करके ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, ठीक है ना? तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे आज के क्लास के लिए, मेरी कोई भी बात को आप स्वीकार नहीं करना, सुन लीजिए, समझ लीजिए। स्वीकार उसी चीज को करिए जिसमें फायदा हो। बिजनेस वाले लोग बहुत फायदा देखते हैं हर चीज में, बिना मुनाफे का तो हम एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं जी। हाँ या ना? हर चीज में मुनाफा होना चाहिए, हर चीज में लाभ होना चाहिए। तो गिरीश भाई की जो बातें लाभप्रद हो, फायदेमंद हो, अच्छा लगे, आपका वैल्यू एडिशन हो, उसी को स्वीकार करना। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मुझे भारत के लोगों की बहुत ज्यादा पहचान है, बहुत ज्यादा जानकारी है, वो इसीलिए भी है क्योंकि मैं भी भारतीय ही हूं, ठीक है ना? मुझे भारत के लोगों के बारे में, उनकी मनोवृत्ति में जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि भारत के लोगों की एक विशेषता होती है। बताऊं? देखता हूं आपको कितनी अपने बारे में विशेषता पता है। मैं आधा मैं बोलूंगा, आधा आप लोग कंप्लीट करना, देखते हैं आपको कितनी जानकारी है। मंजूर है? और जोर से कहिएगा, ठीक है? मेरी कोई भी बात स्वीकार नहीं करना, क्योंकि भारत के लोगों की एक विशेषता है, हम सुनते सबका है। महान है आप लोग। अब जब करना अपना ही है तो मैं सुना करके क्या फायदा जी? 1.5 घंटे का, 2-3 दिन का सुन करके वापस जाकर अपने अपने स्थानों पे करना वही है, वैसा ही है, तो फिर फायदा क्या? ठीक है ना? तो देखना किस चीज में फायदा है उसको स्वीकार। शारीरिक तौर पर फायदा, बिजनेस में फायदा, संबंधों में फायदा, नींद में फायदा, खाने पीने में फायदा, हर चीज अगर मुझे बेनिफिट देती है, हर प्रकार से सुख देती है, तो उसको आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। और वैसे भी बिजनेस के बारे में बताऊं, अगर कोई बच्चा आपके दुकान में आए, कोई भी व्यक्ति आपके स्टेशनरी की दुकान में आए पेन खरीदने के लिए, तो वो पेन ऐसे ही पांच रुपए दस रुपए देकर पेन नहीं खरीदता, उसको लिख के जरूर देखता है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना। पांच रुपए के पेन को भी वो स्क्रूटनाइज करता है, इवैल्यूएट करता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पांच रुपए। और यहां तो जीवन, जीवन कितना मूल्यवान है, इस शरीर कितना मूल्यवान है, हमारे घर के लोग कितने मूल्यवान है, बिजनेस कितना मूल्यवान है, उसको भी तो थोड़ा सा टोल मटोल करके, परख करके, इवैल्यूएट करके हमको स्वीकार करना है, ठीक है। मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, सोचना, समझना, देखना, फायदा लगे तो स्वीकार करना, ठीक है। आज का जो हमारा विषय है वो है आध्यात्मिकता की सत्यता क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा पाया गया धर्म ने हमेशा बंटवारा किया, भेद किया, आपका धर्म मेरा धर्म, आपका भगवान मेरा भगवान, और हर व्यक्ति जो ऐसा करता है उसको लगता है आपका भगवान आपके धर्म से श्रेष्ठ, मेरा भगवान है। आपसे प्रश्न पूछता हूं, कोविड ने तो बहुत तकलीफ दिया मानव जाति को, कोविड वायरस का धर्म बता दीजिए कि वो इस प्रजाति के लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। अरे वो सबके लिए समान था, उससे बचने के लिए जो एंटीडोट था, एंटीवायरस था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसका धर्म बता दीजिए। वो कोई भेदभाव नहीं करता है, वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है। अच्छा, क्रोध, गुस्सा, एंगर, उसका धर्म बता दीजिए। इस संसार में बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, इस संसार में जो बुरी चीजें हैं ना, उसका कोई भेद नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है। हर इंसान के अंदर आपको आज क्रोध, नफरत, आवेश, इनसिक्योरिटी, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं दूसरे लोगों के बारे में कह रहा था। अब बताइए जी, आध्यात्मिकता सबको एक समान स्तर पर लाता है क्या? हम सब परिवार का हर सदस्य हमेशा खुश रह सकता है? वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आज मैं आपको तीन परिभाषा बताता हूं आध्यात्मिकता की। पहली परिभाषा आध्यात्मिकता का, मनुष्य आदि काल से, जब से हमने होश संभाला है अब तक और आने वाले जितने समय मनुष्य जीवित रहेगा, हम सब का, मानव बुद्धि का एक ही लक्ष्य रहा है, मानव जीवन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर माइक है, तार है, एम्पलीफायर है, स्पीकर है। मान लीजिए ये माइक नहीं होता, जिसने भी इसका आविष्कार किया अगर वो यहां आ जाए साक्षात, तो मैं उनके चरण छू लूं, क्योंकि अगर ये नहीं होता था
तो गिरीश भाई को चिल्ला के बात करना पड़ता,
डेढ़ घंटा चिल्ला के बात करते तो मेरा गले में तकलीफ हो जाती थी। अभी मैं बहुत थोड़े मतलब कम आवाज में बात कर रहा हूं, ये एम्पलीफाई कर रहा है। इसने गिरीश भाई का डेढ़ घंटे का जीवन आसान कर दिया। मुझे मैं कल नडियाद में था, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक किया, बोला चिंता की कोई बात नहीं है, दवाई लिख के दे दिया। उसमें एक पेन किलर था, एक एनाल्जेसिक था, उसमें एक मसल रिलैक्सेंट था। मैंने खाया, आधा घंटे के अंदर दर्द गायब। दवाई आसान, मेडिकल साइंस आसान, कोई भी अध्ययन शास्त्र अध्ययन क्षेत्र आप देख लें, समाज शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल साइंस, हिस्ट्री, स्पेस रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, जो आजकल के नए क्षेत्र, पुराने जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब पुराना जमाना नहीं, कुछ वर्ष पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आज बच्चा शायद इंजीनियरिंग उन फील्ड में जाना ही नहीं चाहता है, वो सीधे कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ऐसे ऐसे विषय जो हमने कभी कानों से सुने ही नहीं थे। कितना मनुष्य जीवन को सहज बनाने के लिए कर रहा है। जिस सोफा सेट में या कुर्सी में बैठे इजी, जो कपड़े आपने पहने इजी, चश्मा इजी, मोबाइल इजी, घड़ी इजी, पंखे इजी, बिजली इजी, कैमरा इजी, टेबल इजी, हां या ना। देखा, आपके पास ये नहीं है तो आवाज ही नहीं पहुंच रही है, जोर से बोलिए। प्रश्न नंबर एक, मुझे जवाब नहीं दीजिए, खुद को जवाब दीजिए, लेकिन सोच समझ करके और सत्य उत्तर। आज वर्तमान समय में मानव जीवन आसान है या कॉम्प्लिकेटेड है? क्या बात है जी, कॉन्फिडेंस तो देखो आपके उत्तर का, पूछा नहीं उसके पहले ही माता जी बोल रही कॉम्प्लिकेटेड। इतना सब कुछ है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कैसे है फिर? और वो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, बीमारियां बढ़ी या कम हुई? न्यूज़पेपर में, टेलीविजन चैनल में नेगेटिव समाचार ज्यादा या पॉजिटिव समाचार ज्यादा? नेगेटिव। डाइवोर्स केसेस शादी के पश्चात ज्यादा या कम? कोर्ट में केसेस ज्यादा या कम? ज्यादा। तो कुछ तो गड़बड़ है। एक तरफ क्या हम चांद में भी पहुंच गए, सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं, क्या क्या मनुष्य कर रहा है, लेकिन यहां जीवन वो इसीलिए ऐसा है, शायद मनुष्य ने जो इन आंखों से दिखता है ना, उन सब को अच्छा करने का प्रयास किया, बाह्य जगत को अच्छा करने का, गाड़ी बंगला सब किया, लेकिन एक जगह शायद हम पिछड़ गए, एक जगह हम अभी भी पुराने हैं, एक स्थान पर अभी भी हम आउटडेटेड हैं, और वो है अंतर का ज्ञान। आध्यात्मिकता वो विज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी अंदर का साइंस है। बाहर तो हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अंतर की दुनिया में हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार बहुत पुराने हैं। आप लोगों ने लैम्बरेटा स्कूटर देखी है, पुराने जमाने में बहुत भारी लंबी, जिन्होंने देखी है, चलाई है, उस पर बैठे हैं, जरा हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है जी, धन्यवाद। अभी आपके पास जो गाड़ी है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर बाइक, वो मैं ले लेता हूं और आपको एक्सचेंज ऑफर पुराना लैम्बरेटा देता हूं, स्वीकार होगा? क्या बात है, बच्चे बोलते बिल्कुल नहीं। माताएं, आपके घर के किचन का जो गैस है वो मैं ले लूं और आपको पुराने जमाने का चूल्हा दे दूं, स्वीकार होगा? माताएं तो ऐसा कर रही हैं जैसे सुना ही नहीं प्रश्न। मतलब सुनना भी पसंद नहीं आ रहा ये माताओं को, इतनी स्मार्ट है। भाई तो फिर भी कम से कम जवाब दे रहे, माताएं ऐसे ही होता है जी, जब जवाब ही नहीं देना होता हम सुन ही नहीं रहे हैं। बहुत अच्छा, इतनी स्मार्ट है हमारे बिजनेस वाली माताएं, टू गुड। स्वीकार ही नहीं है, लेकिन हमारे ख्यालात, हमारे विचारधारा वो नई हुई है क्या? इज इट न्यू या इज इट ओल्ड? वहां परिवर्तन कर। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये एक विद्यालय है, यहां हमको शिक्षा मिलती है, यहां हमको ऐसी ऐसी बातें सिखाई जाती है जो बहुत 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 नई है। बाकी सब चीजें मनुष्य को नई चाहिए, नया चाहिए, न्यू चाहिए, लेकिन सोच विचार हमारा बहुत पुराना, उसमें भी तो, चिंतन में भी तो नवीनता चाहिए। और शायद इसी वजह से, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी इसका जो ज्ञान है इतना नवीन है, इतना न्यू है, और क्योंकि हम पुराने विचारधारा और दृष्टिकोण को इतने कड़क होकर पकड़ के बैठे कि उसको स्वीकार करने में तकलीफ होती है, लेकिन फायदा किस में है? पुरानी चीज आप स्वीकार नहीं करेंगे, पुराना चूल्हा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन नई ज्ञान को स्वीकार करने में, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना शास्त्रों में लिखा है, ऐसा थोड़ी ना हमारी परंपरा चली आ रही है। थोड़ी सी नई विचारधारा। तो पहला अंडरस्टैंडिंग है आध्यात्मिकता माना अंतर से हम सहज हैं, इजी हैं, रिएक्टिव नहीं है, आवेश नहीं है, परेशानी नहीं है, ज्यादा सुख और शांति है। ठीक है, तो द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज माय लाइफ इजी। नंबर टू, आसान परिभाषा आध्यात्मिकता की, और वो है गुड, अच्छा। अच्छा बनिए स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी। कितना इजी परिभाषाएं। अब ये अच्छा भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मनुष्य ने। जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा भी सब्जेक्टिव है, अच्छा भी कंफ्यूजिंग हो गया है। बच्चा पता नहीं किन बातों के इन्फ्लुएंस में आके शराब पीना, सिगरेट पीना अच्छा मानता है, और माता पिता समाज बोलते वो खराब है। झूठ बोलना अच्छा है या बुरा है? जोर से बोलिए। फिर भी बोलता हूं, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे। मालूम है सिगरेट पीना बुरा है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट इज कैंसरस इन नेचर, लेकिन पीता हूं। क्या मतलब ये जानकारी का कि सिगरेट पीना बुरा है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना ठीक नहीं है? अब बताइए कहां है जी आध्यात्मिकता? इतना कंफ्यूजिंग है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, प्लीज बताइए अच्छा है या नहीं। हमारी माताएं घर में शॉपिंग करके घर में गई, देखा बच्चा टीवी देख रहा है। माताजी ने बहुत प्यार से पहली बार कहा, क्योंकि ओम शांति में जाके आइए, माताजी ने मुस्कुराते कहा, बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर लो, क्योंकि यहां ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मम्मी ने कहा, बच्चे को टीवी बंद करो। प्रश्न, बच्चा सुनता है? बोलिए। पिता इतने खुश हैं, हमको तो झंझट में नहीं डालो जी, आप अब उनसे ही बात करो, हमको ये सब समझाओ ही नहीं आप। बोलिए, बच्चा सुनता है जब प्यार से कहते हैं तो? हां या ना? हाँ अच्छा ठीक है। माता जितने कॉन्फिडेंस से बोली बिल्कुल नहीं सुनता, मैं तो सिर्फ नहीं सुनता बोल रहा था और उसमें उन्होंने बिल्कुल ऐड कर दिया। क्यों नहीं सुनता? अरे प्यार से सुन लेता तो फिर गुस्सा नहीं करना पड़ता। माताजी ने एक बार प्यार से कहा, दो बार प्यार से कहा, तीन बार प्यार से कहा, चार बार प्यार से कहा। अब माताजी पिताजी का सूर्य अस्त हो रहा है, ओम शांति बिखर रहा है, क्रोध चढ़ रहा है, अंधकार व्याप्त हो रहा है, बच्चा सुन ही नहीं रहा आधा घंटे से। अरे कल परीक्षा है उसकी, इतने प्यार से समझाया, अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया, सहन करके समझाया, तो भी बच्चा नहीं सुन रहा। अब माता जी को आया गुस्सा, उन्होंने कहा ओम शांति बाजू में रखो। ओम शांति से कहां लोग ठीक, यही छोटू कहां ठीक हो रहा है जी। और वहां हमारी दीदियों ने बड़ों ने कहा विश्व परिवर्तन, विश्व छोड़ो एक परिवर्तन नहीं हो रहा। हमारी माताजी ने शांति की टिकली निकाली और ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाई, शांति बाहर, स्नेह की माला भी उतार दी, सहन शक्ति। यहां बताया गया दिव्य गुण, दिव्य गुण, नारी ऐसी कर्म करे जो श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी अक्ष्मी बाद में। हम तो छोटों को छोड़ेंगे, अरे पढ़ाने की जिम्मेवारी, स्नेह सहन शक्ति की कंगन चूड़ी सब सब दिव्य गुण बाहर। अब हमारी माताजी दुर्गा और काली और असुर संहारिणी छोटू के पास आई, दिया एक मिलाकर, पढ़ जाकर कितना देर से तेरे को बोलते, समझ में नहीं आता है। ताली किसके लिए बजा रहे हैं? मैं पिछले आधा घंटे से बोल रहा हूं, मेरे लिए तो एक बार नहीं बजाया, और अब छोटू के लिए बजा रहे हैं कि माता के लिए बजा रहे, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब माता जी ने गुस्सा किया, पता है छोटू झापड़ खाकर क्या सोचता है? ओम शांति में जाके आई है, इससे ज्यादा शांत तो मैं रहता हूं जी। अब बताओ कहां, दिखना तो चाहिए ना शांति। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आधा घंटे तक माता जी ने सब प्यार से समझाया, जब वो नहीं मान रहा था उसकी भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए, क्योंकि वो ना समझ है, पढ़ ही नहीं रहा है, फिर मम्मी ने गुस्सा किया। प्रश्न, अच्छी मम्मी है या नहीं? अगर अच्छी माँ है तो क्यों, और अगर ना माँ कहो पिता कहो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप में से जिन भाई बहनों को लगता है अच्छी माता है जिन्होंने वो गुस्सा किया, हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, जिनको लगता है अच्छी मां नहीं है वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। भाई लोग ज्यादा क्यों हाथ ऊपर उठा रहे हो जी? आप कहीं और का मसला यहां पर मत लाइए, ठीक है? वो बोल रहे अब मौका मिला है बुरा बोलने का, निकाल ही दो भाई, अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन ही निकाल दो। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, कृपया हाथ ऊपर उठाएं और बताएं आप कौन से कैटेगरी में आओ। अच्छी मां है, अच्छी मां नहीं है, ये तीसरा कैटेगरी सबसे खतरनाक कैटेगरी, ये उन महान आत्माओं का कैटेगरी है जिनको हाथ ऊपर उठाने में यहां टेंशन हो रहा। बोले छोड़ो यार, हम सुनने आए थे, ये भाई प्रश्न पूछ पूछ के हमें परेशान कर रहा है, ठीक है? अच्छा भाइयों और बहनों, संसार के किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान को बाजू रख दीजिए, आध्यात्मिकता सबको बाजू रख दीजिए, मेडिकल साइंस हेल्थ कोई भी डॉक्टर को पूछो, किसी भी अच्छे कारण के लिए, किसी के कल्याण के लिए, अन्याय के विरोध के लिए, किसी की भलाई के लिए, For all valid, good, excusable reason, मनुष्य गुस्सा करता है, डॉक्टर को पूछना। जब मनुष्य गुस्सा करता है उसका बॉडी केमिस्ट्री नॉर्मल रहता है कि डिस्टर्ब होता है? जोर से बोलिए, आप बताइए, जानकारी तो हमको बहुत है। तो गुस्सा करते क्यों? गुस्सा शरीर के लिए हानिकारक है, किसी और के कल्याण के लिए खुद का हानि पहुंचाना, ये कहां का ज्ञान है, ये कहां की बुद्धिमानी है। क्रोध अगर बुरा है, प्रश्न ये है जब प्यार से समझा रहे तो वो सुनता क्यों नहीं है, और फिर अगर मैंने क्रोध किया इसका मतलब मां को पिता को किसी भी व्यक्ति को क्रोध रूपी एक्शन पर ज्यादा भरोसा है, और एक बार किया दो बार किया दस बार किया तो मेरी धारणा बन गई है कि गुस्से से ही काम होता है, मैं बच्चे से गुस्से से काम करवाती हूं, हम अपने लोगों से आपके बिजनेस में जो लोग होंगे उससे गुस्से से काम कराते, क्योंकि प्यार से बोलते तो करते नहीं है, लेकिन मुझे प्यार चाहिए उसको भी प्यार चाहिए, लेकिन काम प्यार से नहीं होता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, प्यार ज्यादा शक्तिशाली है या क्रोध ज्यादा शक्तिशाली है? कंफ्यूज नहीं होना, और कंफ्यूज हो रहे हो तो आध्यात्मिक नहीं हो, क्योंकि आध्यात्मिकता की पहली परिभाषा है आसान होना चाहिए, बहुत स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। गांधी जी स्पष्ट और आसान थे, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा कुछ भी हो जाए, वो अंग्रेज मेरे को हड्डी तोड़ेंगे मेरे को टॉर्चर करेंगे, अहिंसा को नहीं छोड़ूंगा, अरे पक्के थे अहिंसा में। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता आप में वो दृढ़ता लेकर के आता है, कुछ भी हो जाए मैं आपका बेटा हूं, और आप बहुत गर्व माता पिता कहलाएंगे संसार में, आध्यात्मिक माता पिता, क्योंकि आपने मुझे संस्कार ही ऐसे दिए, और आपका बेटा सारी दुनिया में 365 दिन जीवन पर्यंत उसकी धारणा यह है कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी प्रलोभन दिया जाए, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसे भी कोई इंसल्ट कर दे, उसको हैंडल करने का दूसरा तरीका, लेकिन गलत तरीका नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि गलत और सही की स्पष्टता है, उसको सहज है वो, चोरी नहीं करूंगा कितने भी विषम परिस्थिति, रिश्वत नहीं लूंगा रिश्वत नहीं दूंगा, गलत तरीके से मुनाफा नहीं कमाऊंगा, क्योंकि हर क्रिया की एक विपरीत और समानांतर प्रतिक्रिया होती है, गलत तरीके से धन कमाइए और खाइए पिए उसका दुष्प्रभाव आपके आपके परिवार को 100% होगा, ये प्रकृति का नियम है, मैं उस प्रलोभन में आऊंगा नहीं, स्पष्ट हूं, कोई डाउट ही नहीं है जीवन के उन कंफ्यूजन्स में, आई डोंट हैव एनी डाउट। क्या ऐसे बच्चे, क्या ऐसा परिवार, क्या ऐसा बिजनेस, क्या ऐसा मैनेजर, क्या ऐसे मेरे 50 लोग जो बिजनेस में काम करते हैं वो वैसे ही होंगे? तब एक नया दुनिया, तब एक नया समाज, तब एक हम सब, आपने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड है, कौन बना रहा है जी कॉम्प्लिकेटेड, इजी करिए। गुड, क्रोध करिए, क्रोध क्या हार्ट के लिए आपके ब्लड के प्रेशर के लिए गुड है? बिल्कुल नहीं है, और हम बीमार रहे हैं बच्चे के कल्याण के खातिर, वो बच्चा कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा ये सोच करके मेरी वजह से मम्मी कैंसर पेशेंट है, ये कहां का अच्छा है ये जी? ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए, आपको देखकर मुझे टेंशन हो रहा है, क्योंकि जब मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूं तो मनुष्य ऐसे डर के बैठता है जैसे कि भाई बहुत भारी भारी चीज है। प्लीज मुस्कुराइए, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए, सब लोग करो, बहुत अच्छा, होठों के किनारे रखो, वेरी गुड, ऊपर की ओर धक्का लगाओ, दांत दिखना चाहिए, चेहरा ऐसे करके हाथ नीचे करो, आजू बाजू वाले को देखो, देखो माता एक दूसरे को, भाई लोग एक दूसरे को देखो मुस्कुरा के, प्लीज देखिए और मुस्कुराइए, अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का योगदान दीजिए। अब ये हालत आ गया जी, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही बैठे रहना, अच्छी बातों को मुस्कुरा के स्वीकार करो, इजी है, अगर अच्छाइयों को स्वीकार करके धारण करना डिफिकल्ट लग रहा है तो आध्यात्मिक नहीं है वो, बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है। अच्छाइयों को आसानी से धार, सहज राज योग, ईश्वर परमात्मा इजी तरीका बताता है। स्पिरिचुअलिटी इजी है, बच्चों को पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स प्राप्त करना इजी है, सच्चाई से, सफाई से, ईमानदारी से सफल बिजनेसमैन बनना आसान होना चाहिए, वो धारणा होनी चाहिए। गलत तरीके से सफल होना कौन सी बड़ी बात है, और सारी दुनिया लगी पड़ी हुई है। रात की नींद, गलत तरीके से मुनाफा कमाइए, रात की नींद सहज या कॉम्प्लिकेटेड मत बताइए, मैं जानता हूं, खुद को बताइए। गलत कार्य करते हैं तो मन खाता है या मन आराम करता है, मत बताइए, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन कहां है वो शक्ति आज के बाद, हे मन तुम खाएगा नहीं मुझे, अंदर हमारा इनर कॉन्शियंस हमको बाइट करता है, गलत किया। ठीक है, तीसरी परिभाषा। और ये सहज और आसान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तीसरा चीज भी हमको नहीं पता आध्यात्मिकता का, और सबसे पावरफुल परिभाषा आध्यात्मिकता की, और वो है सत्यता। सत्य के आधार पर जीवन जिए। सत्य का मतलब सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, वो तो बहुत बहुत क्या कहूंगा, बहुत सिंपल है। सत्यता की बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है। आध्यात्मिकता का ये मतलब नहीं है कि गिरीश भाई भाषण कर रहा है तो आध्यात्मिक हो गया, नहीं, आप सब जो सुन रहे हैं गिरीश भाई से कई गुना आध्यात्मिक हो सकते हैं। गिरीश भाई ने व्हाइट ड्रेस पहन लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आध्यात्मिक है, आप कलर ड्रेस वाले भी बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं। आध्यात्मिकता की अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट है। आपका जीवन सहज है, अंदर भी बाहर भी, आप 24 घंटे 365 दिन गुड, हार्ट के लिए भी गुड, मन के लिए भी गुड, बच्चे के लिए भी गुड, पति के लिए भी गुड। थोड़ा डिफिकल्ट है गुड पति बनना, मैं जानता हूं, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। मुस्कुराइए नहीं। गुड, अ गुड मम्मी, बुरा मत मानिएगा, अ गुड सासू मां। सासू मां बोलता हूं ना तो मेरी सांस चढ़ जाती है, सास और सांस बस बिंदी का ही अंतर। अ गुड हस्बैंड, अ गुड बेटा, अ गुड बेटी, अ गुड बहू, अ गुड ड्राइवर, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा बिना सीट बेल्ट के नहीं गाड़ी चलाऊंगा। पता है सीट बेल्ट कब लगाते हैं, जब पुलिस वाले को देखते हैं और 500 रुपए का नुकसान नजर आता है। मैं तो हेलमेट ही नहीं पहनता हूं, पता है क्यों, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। हंसिए मत, जिसका कम होता है उसको दर्द मालूम होता है। अरे और हंस रहे हैं जी आप, ताली बजा रहे हैं, सर ये बात ठीक नहीं है, आपको किसी के दुख पे भी ताली नजर आ, बजाइए जोर से ताली बजाइए, अच्छी तरह ताली बजाइए। ताली बजाने के अनेक फायदे हैं, आपका एक्यूप्रेशर भी होता है, बाजू वाला जग भी जाता है। ठीक है, भारत के लोग आंखें खोल के सोते हैं जी क्लास में, क्या कर सकते हैं। ठीक है, गुड गुड गुड। हेयर स्टाइल के चक्कर में गलती से सामने वाले ने आके टक्कर मार दी, उसकी गलती, और मेरा सर डिवाइडर में टकराता है और नारियल की तरह फूटता है। प्रश्न पूछो खुद को, अपने बच्चों को, मुझे, जीवन की क्या वैल्यू है कि हम हेलमेट नहीं पहन सकते, और सरकार इतना कार्यक्रम करती है, करने की जरूरत ही नहीं है। इट बेसिकली मीन्स आई डोंट वैल्यू लाइफ। अब देखिए जी, कहां हैं हम अच्छे अपने लिए, कहां हैं हम अच्छे दूसरों के लिए। अगर अच्छे हैं तो आप आध्यात्मिक। तीसरी परिभाषा सत्यता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, पति पत्नी घर में, पति को लगता है वो राइट, उसने जो कहा, उसने जो बोला, उसने जो किया वो सत्य और करेक्ट, पत्नी को लगता है वो करेक्ट, दोनों लोग राइट। मैं आपके घर में आऊं और आप मेरे लिए चाय बनाएं, आपको मुझसे बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार है, बड़ा आदर है, मैडम ने एक चम्मच शक्कर डाल दिया गिरीश भाई को मीठा, पति ने और मीठा करने के लिए दूसरा चम्मच शक्कर डाल दिया, अरे मेरी चाय तो डबल मीठी हो गई। यहां पति राइट, पत्नी राइट, आपस का पारिवारिक जीवन डबल राइट होना चाहिए।
यहां पति राइट पत्नी राइट और दोनों में खींचातान, तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती। विडंबना और कॉम्प्लेक्सिटी यह है कि दुनिया का हर व्यक्ति राइट और सत्य और हालत गंभीर। कमाल है जी, कितना कॉम्प्लिकेटेड है सत्य, कहां है सहजता, कहां है इजी। आपको मैं इजी सत्य की परिभाषा, निराकार परमपिता परमात्मा शिव, जिसको हम बहुत प्यार से आज आपने क्लास किया, शिव बाबा, बाबा माना पिता, पिता हमको बैठ करके सिखाता है। बच्चे इजी है लाइफ, इजी है ज्ञान, इजी है समझना, वो मैं इजी आपको समझाता हूं। सत्य को सत्य होने के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, टू कंडीशंस। मेरी आइडिया सत्य है, आपकी आइडिया सत्य है, हमारी आइडियोलॉजी सत्य है, हमारी मान्यताएं सत्य है, हमारी सोच सत्य है, हमारा स्वभाव संस्कार सत्य है, मेरी बात सत्य, कोई भी चीज सत्य होना है तो दो चीज होनी चाहिए। नंबर वन, सत्य सदा होता है, कभी कभी नहीं होता है। आज सत्य कल झूठ, वो सत्य को माना ही नहीं जाएगा। हर दिन सुबह जन्म से लेकर अभी तक और मरते दम तक, हर दिन सुबह सूर्य उदय होगा। आपको बारिश में नहीं दिखेगा लेकिन उदय जरूर होता है, इसका मतलब पृथ्वी घूमती है, सदा घूमेगी, सूर्य के चारों तरफ भी घूमेगी। इट्स एन इटर्नल फिनोमिना, सत्य है। एक दिन वो थक के रुकता नहीं है, पृथ्वी बोले बहुत हो गया यार आज रुक जाता हूं थोड़ा ना, ऑलवेज। सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, घर की सुरक्षा हमेशा होनी चाहिए या कभी कभी? जोर से बोलिए, हमेशा। मुंबई में दिन दहाड़े मेरे घर के सामने से मेरी बाइक चोरी करके कोई चला गया, हम इंस्पेक्टर के पास पहुंचे थाने में। मैंने कहा साहब क्या है, आपके कंट्रोल वाले एरिया में ऐसे कैसे हो सकता है, कहां है आपका कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर? उन्होंने कहा ओम शांति गिरीश भाई, क्योंकि मैंने वहां बहुत सारे कार्यक्रम किए, वो मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा ओम शांति गिरीश भाई, मैं ओम शांति वाला भड़क रहा हूं, वो भड़काने वाले व्यक्ति ओम शांति बोल रहे हैं, उल्टी दुनिया थी। उन्होंने कहा ओम शांति गिरीश भाई, मैंने कहा ओम शांति बोलने नहीं आया हूं। उन्होंने कहा पधारो, बैठो बैठो बैठो। उन्होंने कांस्टेबल को कहा इनको पानी पिलाओ। मैंने कहा घर में टंकी भर के पानी है, पानी पीने नहीं आया हूं मैं, मेरे को मेरा बाइक चाहिए, FIR दर्ज करो एंड आई नीड माई बाइक। पता उन्होंने क्या कहा, हमेशा तो चोरी नहीं हुई ना, कभी कभी हुई है ना, तो काय भड़क रहे हो? क्योंकि कभी कभी गुस्सा चलता है, कभी कभी रोना चलता है, कभी कभी परेशानी चलता है, हमेशा तो मैंने नहीं बोला था, झूठ एक ही बार बोला था, आप चालते क्या हो? हाँ तो फिर एक बार अगर बाइक चोरी हो तो काय इतना भड़क रहे हो? सफलता बिजनेस में, सफलता मुनाफा, सफलता हर साल होना चाहिए या कभी कभी? हर साल, हर साल 31st दिसंबर को यू क्लोज योर बैलेंस शीट, यू लुक एट योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट ज्यादा तो अच्छा है, आप ग्रो कर रहे हो। हमेशा सफलता, कभी कभी नहीं। लेकिन कभी कभी दुख चलता है, कभी कभी झूठ चलता है, कभी कभी माताओं का रोना चलता है, कभी कभी ईर्ष्या करना। ये कौन सा ज्ञान है जी, ये खुद का ही ज्ञान बना लिया हमने। और फिर पता है मनुष्य और भी क्या कहता है, गुस्सा तो नेचुरल है, रोना तो नेचुरल है, जीवन सुख और दुख का खेल है, रात और दिन का खेल है। तो आपका बच्चा आकर कहे, दसवीं में पढ़ने वाला, पप्पा नाइन्थ स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा फर्स्ट आया, क्योंकि लोग बोलते हैं जब तक दुख नहीं होगा ना, सुख की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, हमेशा सुखी रहोगे तो क्या होगा। तो आपका बच्चा के कहता, पापा नवी कक्षा तक मैं हमेशा फर्स्ट आया, मजा नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रहा, इसीलिए दसवीं में एक बार फेल हो जाता हूं, लगाओगे फिर दो खींच। विफलता को समझने, मैं स्वास्थ्य को जानना चाहता हूं इसीलिए सिगरेट पी रहा हूं, कैंसर हो फिर पता चले वैल्यू क्या। झूठ बोलो, गड़बड़ करो, गुस्सा करो, बीपी चढ़ाओ, कैंसर लो, फिर पता चले भाई सुख। हमारे साथ समस्या पता है क्या है,
आप गाड़ी खरीदे, नई गाड़ी 15-20 लाख की, उसके साथ एक बुक मिलता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक, उसमें लिखा रहता है पहली सर्विसिंग कब करानी है, तब तक गाड़ी को कैसे चलानी है, दूसरी सर्विसिंग इतना किलोमीटर या इतना दिन, उसके बाद हम इंजन ऑयल चेंज करेंगे, हम अच्छी तरह उसको फॉलो करते हैं, हाँ या ना? गाड़ी खराब हो जाएगी जी, 20 लाख की गाड़ी है, उसकी इंजन खराब हो जाएगी। और अगर बेटा गाड़ी चला रहा है तो उसको बोलते ध्यान से चलाना, नई गाड़ी है, कितना ध्यान है जी 20 लाख का? प्रश्न पूछूं, मनुष्य जीवन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक कहां है? सब अपने मर्जी से चला रहे हैं जी जीवन को, थोड़ा गुस्सा चलता है। गाड़ी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक मैन्युफैक्चरर आपको देता है, आप नहीं डिसाइड करते कि हाँ 3 महीने के बाद करा लूंगा, दूसरी सर्विसिंग 10 दिन में करा लूंगा। अरे वो बताते, उसने बनाया है गाड़ी, उसको सब पता है कब ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, कैसे चलाने से आप लंबे समय तक उसका फायदा उठा सकते हो। प्रश्न, जीवन, मानव जीवन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक कहां है? उसको फॉलो करो। हमने तो अपनी मर्जी से, थोड़ा गुस्सा चलता है, थोड़ा झूठ चलता है, देखो हाल क्या है आज दुनिया का। आप ही ने कहा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कॉम्प्लिकेटेड का आधार ही है। एक नियम है ना, लेफ्ट से चलो, भारत की हर गाड़ी में राइट साइड में स्टीयरिंग होगा, पूरी दुनिया में लाल बत्ती में रुकना है, ग्रीन बत्ती में चलना है, एक सत्य एक होता है और सदा होता है, सबके लिए समान है। उत्तर प्रदेश वाला बोला नहीं हरी बत्ती में मैं गाड़ी चलाऊंगा, पंजाब वाला बोला नहीं मैं लाल में चलाऊंगा, अरे हालत गंभीर हो जाएगी, जितना मेरा बचा है ना ये भी उड़ जाएगा, वैसे ही सब एक होकर के भी हमारा इतना उड़ गया है। प्लीज बताइए ना, एक होना चाहिए ना, और सबके लिए समान होना चाहिए। सत्य एक होता है सदा, पहला कंडीशन, ऑलवेज हैप्पी। और वो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक है ना, ब्रह्मा कुमारी के लैंग्वेज में ईश्वर परमात्मा मैन्युफैक्चरर वो है, मैं नहीं हूं, मेरी कोई भी बात मत मानिए, मैंने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया था, लेकिन सत्य को स्वीकार करिए। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर सत्य बोलता है, आपके घर में काम करने वाले वो व्यक्ति सत्य बोलता है, बच्चा सत्य बोलता है, गिरीश सत्य बोलता है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्य इंपॉर्टेंट है। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है व्यक्ति को हमने, क्योंकि ब्रांड व्यक्ति का बन रहा है, उसने कहा, अरे क्या कहा जा रहा है जी, वो फायदेमंद है, सत्य है, लाभप्रद है, बस मास फॉलोइंग है व्यक्ति को, इसीलिए हमने पहले ही कहा मेरा नहीं सुनना है सत्य। और वो सत्य का आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं श्री मत। हम अपने जीवन को अपने मन मत से चला रहे हैं। कभी कभी गुस्सा चलता है, कभी कभी चोरी नहीं चलता है, कभी कभी फेलियर नहीं चलता है। कमाल है जी, एक कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इधर। एक उदाहरण देता हूं आपको, ठीक है? सत्य की दो परिभाषा, एक है सदा, जोर से बोलिए सदा बोलिए, फैंटास्टिक। दूसरा है समान, सत्य सबके लिए एक होता है, ऑलवेज होता है, और वन होता है, अलग अलग सत्य नहीं हो सकता। मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को मैं ऊपर फेंकता हूं तो क्या हुआ पेन? बहुत अच्छा जी, नीचे आया। क्यों नीचे आया? वंडरफुल, छोटू को भी पता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। धरती हर चीज को एक लिमिट तक खींचती है। अच्छा, ग्रेविटी को किसने बनाया? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी है ये बहन, समझदार है। उन्होंने कहा बनाया नहीं गया, उसको खोजा गया, क्योंकि कई लोग बोल देते न्यूटन ने बनाया। मैंने कहा महान है आप, न्यूटन के जन्म के पहले भी सेब गिरता था, उसने उसको खोजा। हम होते तो एप्पल खा लेते थे, उसने कहा क्यों गिरा, उसके पीछे का क्या विज्ञान है, उसका संशोधन किया, रिसर्च किया, और पता चला धरती हर चीज को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से खींचता है। ये तो सब जानते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, ग्रेविटी को किसने बनाया? कई लोग फिर मुझे कह देते हैं प्रकृति ने बनाया, नेचुरल है, तो पांच तत्व है ना, जल अग्नि वायु, उसको किसने बनाया? फिर लोग बोलते हैं टकलू हमको पता है तुम कहां की ओर जा रहे हो, और वो तुरंत बोल देते हैं भगवान जी ने बनाया। खत्म करो यार डिस्कशन, और उनको भगवान जी ने व्हाट्सएप में भेजा मैंने बनाया है गिरीश को बता दो, कनेक्शन ही आपका भगवान जी से इतना स्ट्रांग है? भगवान ने बनाया है नहीं बनाया है मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा जानकारी है इट्स ओके। एक चीज मेरे को बहुत स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो है आसान, वो ये है मैंने नहीं बनाया। किसने बनाया छोड़ दो जी, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने नहीं बनाया इसका मतलब आपने भी नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया है इसका मतलब मनुष्य बुद्धि की रचना नहीं है।
काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोह काज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोह काज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज।
गीत के बोल में थे अविनाशी आत्मा जो सदा रहता है, शरीर विनाशी है, इसके आधार से जीवन जिए दुख गारंटीड है, सत्य के आधार से जीवन जिए। ग्रेविटी सत्य है, गिरीश भाई के जन्म से लेकर मृत्यु तक ग्रेविटी काम करेगी, मेरे जीवन के लिए तो सदा है, पृथ्वी की आयु मनुष्य की आयु सदा सबके लिए समान, महिलाओं के लिए भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पुरुष के लिए, अमेरिकन्स के लिए भी बात, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है पसंद नहीं है आपको तकलीफ हुई है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर दिन काम कर
हर पल आप पर काम, आपको ध्यान रखना है जी। सबके लिए एक, सबके लिए समान और सदा, ठीक है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ग्रेविटी सत्य है, फिजिकल सत्य तो है ही, नेचुरल सत्य तो है ही है। अब हम अपने जीवन को कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण के लिए गिरीश भाई को ग्रेविटी पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं परेशान हूं ग्रेविटी को, दुखी हूं, चिंता कर रहा हूं, रात को मेरे को नींद नहीं आती, मेरी ब्लड की प्रेशर चढ़ी हुई है। आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसा है भाई, आपको क्या तकलीफ हो रही है। उदाहरण, मैं एक बार जहीराबाद में था, तेलंगाना में एक जगह है डिस्ट्रिक्ट, वहां महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर बनता है, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स डिवीजन, और वो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। आप वो ट्रैक्टर देखेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये ट्रैक्टर, उसका टायर का साइज अलग है, उसका कैबिन एसी कैबिन है, भारत में ऐसे ट्रैक्टर्स नहीं होते हैं। वहां हमने कार्यक्रम किया, मैं कर रहा था, तो मुझे माउंट आबू, आप जाएंगे माउंट आबू, प्लीज जाइएगा माउंट आबू, आपको पता चलेगा कि कैसे ईश्वर पिता परमात्मा एक नई विश्व की स्थापना का कार्य कर रहा है। बहुत सुंदर है ऊपर माउंट, यहां इतना अच्छा मौसम है, आप तो वहां पे बादलों को छू सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा मुस्कुराएं, हाँ इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं तो थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। तो गिरीश भाई को फोन आया माउंट आबू से कि आपको वहां कार्यक्रम करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूं कल, क्योंकि मुझे पटना जाना है तीसरे दिन, फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, फॉक्सी स्त्री रोग विशेषज्ञों का एक संगठन है, और हम उनको क्या सिखाते हैं पता है, एक गर्भवती महिला डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर उसको लिखती है फॉलिक एसिड टैबलेट, आयरन टैबलेट, विटामिन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, आयरन टैबलेट, हैप्पीनेस टैबलेट, खुशी का टैबलेट, तो तुम करो भैया, हम सिर्फ शरीर का ध्यान रख लेंगे। शरीर प्रभावित होता, आप ही ने कहा क्रोध करने से बीपी चढ़ता है, और गर्भवती महिला क्रोध कर रही है, छोटू का क्या हाल होगा जी अंदर। अगर अभिमन्यु मां के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह वेदना जान सकता है, सिर्फ सुभद्रा ने सुना, और जब बाहर निकलने की बात कर रहा था अर्जुन तो मैडम सो गई। हम भी ज्ञान के बातों को सुन करके सो जाते हैं, या हम सोए पड़े हैं, हमको सुना ही नहीं दे रहा। और दुख की बात यह है कि पढ़ी लिखी भारत की माताएं गर्भ धारण करके घर घर की कहानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम मोबाइल और टीवी देख रहे हैं, चक्रव्यूह भेदना सुन करके अगर छोटों को चक्रव्यूह भेदना सीख लिया अभिमन्यु ने, हम क्या कुछ कचरा डाल रहे हैं इधर से। आज देखो बच्चों की हालत, एक मिनट शांति से नहीं बैठता है। प्लीज समझिए आध्यात्म जीवन को कितना फायदा करता है। हमारे कितने रिसर्च हुए हैं यहां पर, आप हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी से मिलिए, हार्ट पर रिसर्च किया उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और टीम के साथ मिलकर। जैसा सोचेंगे वैसा शरीर काम करेगा, उसको तो थोड़ा ठीक करो। तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, उन्होंने कहा आप आज रात ही निकलो, हम आपको तीसरे दिन सुबह अहमदाबाद से बुक कर देंगे टिकट। हमने कहा ठीक है, पॉसिबल था। मैं रात के 1 बजे जहीराबाद से निकला, सुबह हैदराबाद पहुंचा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुबह की फ्लाइट पकड़ कर अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से नाश्ता किया, फिर 5-6 घंटा मैंने ट्रैवल किया बाय रोड माउंट आबू, 2 बजे पहुंचा, खाना खाया, शाम का 4:30 का एक क्लास कराया, 6:30 का एक क्लास कराया, 8 बजे फिर डिनर किया, फिर 5-6 घंटा मैंने ट्रैवल किया वापस अहमदाबाद, फिर रात के 2 बजे पहुंचा। 2 रात मैं सोया नहीं हूं, थका हुआ हूं, और तीसरे दिन सुबह 7 बजे मेरी फ्लाइट है पटना के लिए। मुझे था कि उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, मैंने अलार्म सब सेट किया, इतनी गहरी नींद, जब उठा तो मैं लेट हो गया, मेरे पास 15 मिनट बचे थे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। हे भगवान, मैं बेड से जंप लगाया, सीधे बाथरूम में गया स्नान करने के लिए, स्नान करते जल्दी जल्दी स्नान करते हुए पता नहीं क्या हो गया मैं फिसल गया बाथरूम में, और धड़ाम करके मैं जमीन में गिरा।
मेरे कंधे पे बहुत चोट आई। प्रश्न, गिरीश भाई के कंधे गिरने से कंधे के चोट का दर्द का कारण कौन बताइए? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कितनी अच्छी बहन है, हड़बड़ी बहन, भावनाओं की तो कोई कदर ही नहीं है आपको। एक तो मैं दुख भरी कहानी सुना रहा हूं, ऊपर से आप जले पे नमक छिड़क रहे हो, उल्टा गाली मुझे ही दे रहे हो। तेरी हड़बड़ी, तूने ध्यान से नहीं किया, तुमने नहीं सोया, तू जल्दी क्यों नहीं उठा, तुम सोए क्यों पड़े हुए थे, सारा दोष मुझे ही दे रहे हो जी। एक तो मैं थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूं, तो थोड़ा चलो छोड़ो, मजाक कर रहा हूं, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है ना? बताइए मेरा दुख भाइयों और बहनों, मैं दो रात नहीं सोया हूं, सत्य है, फैक्ट है। मैं थका हुआ हूं, दो रात सोया ही नहीं, सत्य है। मैं लेट उठा, सत्य है। हड़बड़ी किया, सत्य है। जल्दीबाजी में बाथरूम में गया, सत्य है। बाथरूम का फर्श पे पानी पड़ने से उसकी चिकनाहट बढ़ गई, सत्य है। मैंने ध्यान नहीं दिया, सत्य है। फिसला, सत्य है। धड़ाम करके गिरा, सत्य है। प्रश्न ये है, गिरा क्यों? जोर से बोलिए, गिरा क्यों? हवे में ऐसे 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 फ्लोट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्योंकि आप सही है बहन, आपको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप अच्छे। गुरुत्वाकर्षण की वजह से चोट लगी, इसीलिए मेरे को रात को नींद नहीं आता, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। बताइए क्या करूं, शांति सुख आनंद और चैन की जिंदगी जीना चाहता तो गुरुत्वाकर्षण ने गड़बड़ करके रखा। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपसे पूछता था। मैं एक बार चेन्नई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सब डॉक्टर्स बैठे हुए थे, जैसे आप बिजनेस के क्षेत्र से हैं, सब डॉक्टर। मैंने बहुत सर, मेरे को ना बहुत टेंशन हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के, मेरा बीपी चढ़ा हुआ गुरुत्वा, मेरे को रात को नींद की दवाई खानी पड़ती है, प्लीज मदद करिए। वो एक भाई साहब ने कहा मैं मदद करता, एक बहन ने भी कहा। मैंने कहा भाई साहब बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छा, मेरे को तो गुरुत्वाकर्षण से समस्या है। तो उन्होंने कहा मेरी जो विशेषता है ना, मैं घुटना चेंज करता हूं, नी रिप्लेसमेंट है मेरी विशेषता। मैंने कहा सर बहुत अच्छा, मेरे को गुरुत्वाकर्षण से समस्या है। उन्होंने कहा गिरीश जी मैं तुम्हारा दोनों घुटना फ्री में चेंज कर देता हूं। मैंने कहा जिंदगी में सर कई बार सिर दर्द किया, पेट दर्द किया, बदन दर्द किया, घुटना आज तक दर्द नहीं किया और आप काई को चेंज कर रहे हो? बोला तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिमाग घुटने में आ गया है, ताली क्यों बजा रहे हैं? आप लोगों को ना भावनाओं की सच कोई कदर नहीं है, ठीक है ना? मेरा हालत खराब कर रहे हो डॉक्टर साहब और आप ताली बजा रहे हो। मैंने कहा सर गलती से भी नहीं आऊंगा आपके पास, मेरे को गुरुत्वाकर्षण से प्रॉब्लम है, आप घुटना काय को चेंज कर रहे हो? मैंने मैडम को कहा मैडम आप बताइए समाधान, पहले ये बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा मैं मनोरोग चिकित्सक हूं। मैंने कहा फिर आप मुस्कुरा रहे हैं? मैंने कहा सर सही व्यक्ति के पास पहुंच गए। मैंने कहा मैडम बताइए क्या करूं? उन्होंने कहा दो दवाई है आपके लिए। मैंने कहा एक से नहीं चलेगा, बीमारी ज्यादा है क्या? बोला नहीं, एक दवाई खाइए, असर ना करे तो दूसरा खा लेना, प्लान बी। मैंने कहा कितने अच्छे हैं। मैंने कहा पहली दवाई? उन्होंने कहा गिरीश जी भर्ती हो जाओ। कहां पे? पहले रो में बोलते हैं पागल खाने, ये वो घुटना चेंज कर रहे हैं, ये मुझे पागल खाने एडमिट कर रहे हैं। मैंने कहा समस्या क्या है? मैंने कहा मैडम नहीं मैं भर्ती होऊंगा, दूसरी दवाई बताइए। पता है उन्होंने क्या कहा? दूसरी दवाई है स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। सत्य को स्वीकार करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। गुड न्यूज आप सबके लिए, गुड न्यूज, एक बार जोर से ताली बजाइए, बहुत अच्छा। ये ताली मैंने आपके लिए बजवाई, आपसे इस सभा में, इस बड़े डायमंड हॉल में एक ही व्यक्ति बेवकूफ है, ना समझ है, अज्ञान है। आपने अपने वर्तमान जीवन में जन्म से लेकर अभी तक जितना भी आपका समय रहा है, आपने एक भी बार गुरुत्वाकर्षण को गाली नहीं दी। आपके हाथ से गिरा कुछ चीज, अरे मेरी गलती। बच्चे के हाथ से कुछ गिरा, तुम्हारी गलती।
गुरुत्वाकर्षण को लेकर तो कभी चिंता ही नहीं की, कभी बोला कितना खराब है तू? नहीं ना, इसका मतलब आप मुझे छोड़ दीजिए, इसका मतलब आप सबको स्वीकार करने की ताकत है। आपको स्वीकार आपने किया अभी तक? आपने एक बार एक विचार आपने गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट नहीं किया? ऐसा कैसे पृथ्वी इतनी गंदी गुरुत्वाकर्षण, कभी नहीं बोला। यू एक्सेप्टेड, यू हैव द पावर टू एक्सेप्ट। मैंने तो स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वो घुटना चेंज कर रहे थे, इसीलिए भाई साहब एडमिट कर रहे थे हमें। प्रश्न पूछूं? मुझे मत जवाब दीजिए, अपने आप को जवाब दीजिए। क्या हमने अपने पास्ट को वो जो जैसा हुआ वैसे स्वीकार किया? पत्नी को स्वीकार किया? पति को स्वीकार किया? सासू मां को बच्चों को स्वीकार किया? टकलू सिर को स्वीकार किया? बिजनेस में इतनी मेहनत कर रहा हूं, अभी तक जैसा चाहता हूं वैसे सफलता नहीं मिली, करेंगे, लेकिन स्वीकार किया क्या कि परेशानी परेशानी, चिंता चिंता, ऐसा ऐसा? अब बताइए जी, गुरुत्वाकर्षण को तो स्वीकार किया, इन चीजों को क्यों नहीं स्वीकार किया? बुरा मत मानिए, भाई साहब जवाब देंगे। कहां एडमिट होने लायक हो? अब तो बोलती बंद हो गई, मेरे लिए तो सीधे एडमिट पागल खाने। अपना भी थोड़ा सोचिए, बुरा मत मानिए। ईश्वर परमात्मा आकर हमको सत्य बुद्धि देता है, वो बुद्धि जो सत्य के आधार से चलता है। गुरुत्वाकर्षण को स्वीकार करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। बताऊं, इस संसार में इतिहास का किताब खंगाल लीजिए, एक घटना मुझे बताइए आज तक, क्या गुरुत्वाकर्षण के नाम पर दो लोगों के बीच तू तू मैं हुई? दो कंट्रीज के बीच में युद्ध छिड़ रहा है आज गुरुत्वाकर्षण के नाम पर। भाइयों और बहनों, गुरुत्वाकर्षण एक है, एक के नाम पर दो लोग नहीं लड़ सकते, संभव ही नहीं है। और यहां घर घर में दो लोग लड़ रहे हैं और दोनों को लगता दोनों सही है, पॉसिबल ही नहीं है। लड़ाई करिए गुरुत्वाकर्षण के नाम पर, दो धर्म लड़े गुरुत्वाकर्षण के नाम पर, दो व्यक्ति लड़े गुरुत्वाकर्षण के नाम पर, पति पत्नी झगड़ा करे, बातों बातों में झगड़ा करे गुरुत्वाकर्षण के नाम पर, सत्य के नाम पर झगड़ा विवाद आर्ग्यूमेंट तनाव स्ट्रेस टेंशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सत्य ऐसा ही है, उसका नेचर ही ऐसा है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, 24 घंटे क्या मैं सत्य के आधार से जीवन जीता हूं? मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है, आप खड़े होकर गाली दें मुझे, क्योंकि मैं सत्य जानता हूं और वो सत्य के आधार से शांत इजी सिंपल ना मेरा बीपी चढ़े, इज इक्वल टू आध्यात्मिकता। यही है आध्यात्मिकता और कुछ नहीं है। प्रश्न, मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, बिजनेस तो भर भर के अनिश्चितता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है, यूक्रेन युद्ध छिड़ रहा है, क्या इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मार्केट फ्लक्चुएशन, कितनी अनिश्चितता है जी। बिजनेस यस और नो? वंडरफुल। मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, लाइफ इज अनसर्टेन। तीन ऑप्शन है, बताइए कौन से। नंबर वन सत्य है, मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारी सारी दुनिया को सिखा रही है अनिश्चितता है, कि ये सत्य है। बोलिए क्या है? सत्य है, करेक्ट? जिनको लगता है सत्य है हाथ ऊपर उठाइए। वाह जी, आप सब जानते हैं, बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछूं, मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, इसका अर्थ है कल क्या होगा इस संसार के किसी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सत्य सदा है और समान है। हां या ना? करेक्ट। प्रश्न, फिर मनुष्य कल को लेकर चिंता क्यों कर रहा है? करो भर भर के चिंता, कल का दिन अच्छा होगा? अरे आप प्लान करिए, आप ऑर्गेनाइज करिए, आप पॉजिटिव बनिए, आप आशावादी बनिए कि कल का दिन परसों का दिन आज से और सुनहरा होगा। वो सकारात्मक चिंतन अच्छा है, गारंटी हां या ना, कोई गारंटी नहीं है। अब मेरा प्रश्न है, चिंता क्यों कर रहे हो? बच्चों के भविष्य को लेके चिंता करके करके माताएं परेशान है जी, पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। अरे ये पता नहीं क्या करेंगे उसको समाप्त करिए, असत्य है। क्यों हम इतने इनसिक्योर हैं? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है, पुराने ख्यालात, पुराने विचारधारा, पुरानी मान्यताएं, परंपरा चली आ रही है। दूसरा उदाहरण, मृत्यु, डेथ, सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, सत्य है, घबराते क्यों हैं? गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, जीसस क्राइस्ट ने भी शरीर छोड़ा, प्रोफेट मोहम्मद ने भी शरीर छोड़ा, गुरु नानक देव जी ने भी शरीर छोड़ा, मेरी मां ने भी शरीर छोड़ा आज से 20 साल पहले, जिनको मैं बहुत प्यार करता था, मेरे बाबूजी भी कल परसों नरसों पता नहीं कब शरीर छोड़ेंगे। आप सब इस संसार में हर व्यक्ति एक दिन शरीर छोड़ेगा, सत्य है, सदा है और सबके लिए है। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो मरा नहीं आदि काल से लेकर अब तक, सत्य है ना? डरते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, विचलित क्यों होता है मनुष्य मृत्यु को सोच के, और सोच सोच के जीवन को खराब कर रहा है? हेलो, मुस्कुराकर बैठे, इतना भारी भारी सुन के लगता है, अरे अभी तक भारी भारी कर रहे थे, ये तो आपको सहज बनाएगा, गुड बनाएगा। आज का 24 घंटा मस्त जिए, आनंद से जिए, क्योंकि पता ही नहीं है जी कल क्या होगा। और आज अगर आनंद और मस्त और सिंसियरिटी के साथ जिएंगे तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि कल सुनहरा होगा। जैसा आज होगा वैसे ही कल होगा ना, बजाइए तन। पता है मृत्यु को लेके डर क्यों है, चिंता क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं सत्य क्या है। सत्य आपको कल सुबह पता चला, सत्य आज दोपहर के क्लास में था कि मैं इस शरीर से अलग एक अविनाशी, कभी नहीं मरता, सदा चमकता हुआ एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आप सब आत्माएं हैं, आत्मा एक एनर्जी है, कभी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, कभी उसको बनाया नहीं जा सकता, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मेरी मां कभी नहीं मरी है, आत्मा ने शरीर पुराना, कल मैंने पुराना, मतलब कल जो मैंने कुर्ता पैजामा पहना था आज सुबह उसको धोने में डाल दिया, गंदा हो गया, मैला हो गया, पसीना हो गया, उसके स्त्री खराब हो गई, आज सुबह उठ के मैंने फ्रेश, प्रश्न, नया धुला हुआ कपड़ा पहनने में दुख होता है क्या? जोर से बोलिए, उल्टा और अच्छा लगता है। हम तो एक दूसरे को पूछते भी हैं, कैसे लग रही हूं? क्या बात है जी, पुराने का दुख छोड़ो, नया का कैसे लग रहा हूं? पुराना घर, आपने बहुत बिजनेस की, बहुत अच्छी तरह धन कमाया, अपने सपने का घर जैसे आपको चाहिए था, सबने मिलकर, परिवार वालों ने मिलकर, अच्छा 2 बेडरूम हॉल किचन 15वां माले में सी फेसिंग आपने जुहू बीच में खरीद लिया 2-4 करोड़ का। प्रश्न, पुराना घर छोड़कर के नया घर जाने में दुख और चिंता होगी, हां या ना? बिल्कुल नहीं। और अगर गिरीश भाई को पता चल जाए कि मैं शरीर छोड़ने, आत्मा शरीर छोड़ने वाली अगले 2 मिनट में, वाओ, मैं तो हमारी दीदियों के साथ केक भी काट लूंगा, गीत भी गाऊंगा, डांस भी करूंगा, सबको खिलाऊंगा। अरे 2 मिनट में आत्मा शरीर छोड़ने वाली है, क्यों खुशी मनाऊंगा? क्योंकि मैं ये आत्मा एक मां के गर्भ में जाकर एक नया शरीर मिलने वाला है, नया घर, नया ड्रेस, नया साइकिल, ऐसे ही नया शरीर। और आत्मा शरीर छोड़ते छोड़ते पॉसिबल है नहीं है पता नहीं, मैं एक बार अटेम्प्ट तो कर ही लूंगा, प्रयास करने में क्या हर्जा है। मैं भगवान जी को SMS करूंगा, सॉरी WhatsApp, भगवान जी अगला जन्म लड़की का लंबे घने बाल, अरे अज्ञानतावश मृत्यु को लेकर अगर दुखी हो सकते हो तो फिर ज्ञानवश मृत्यु का सुख क्यों नहीं अनुभव किया जा सकता है। सोच सोच के डरते हैं, सोच सोच के परेशान होते, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अज्ञानता है। मुझे नहीं पता क्योंकि इतना परेशान होना बालों को लेके मुक्ति, नया शरीर, आहाहा। अरे मृत्यु, डर या निडर का आधार है असत्य ज्ञान और सत्य ज्ञान। जीवन को सत्यता के आधार पर चलाइए। मैं आत्मा कभी नहीं मरती, यहां जितने आत्माएं बैठे हैं कभी नहीं मरेंगे, इस संसार में कोई व्यक्ति कभी नहीं मरता, पुराना शरीर छोड़ा। लुक एट द न्यू नॉलेज, इसको धारण करिए ना, फिर अपने और अपनों के मृत्यु का डर नहीं रहेगा। हो सकता है, हो सकता है क्या? उसके लिए ब्रह्मा कुमारी में आकर अच्छी रीति से समझिए, ज्ञान को समझिए, सत्य ज्ञान को। मेरा ज्ञान और नहीं है यहां, ये दीदियों का ज्ञान नहीं है, ईश्वर सत्य है, एक है, सबके लिए समान है। ग्रेविटी जैसे सब एक है और सबके लिए समान है, अलग अलग भगवान, अलग अलग मान्यताएं, और हम कंफ्यूजन में जा रहे हैं। माँ घर में जाती है, बच्चे को बोलती है एक बार प्यार से, दो बार, चार बार, पांच बार, और फिर उसको गुस्सा आता है। पता है क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो भूल गई सत्य ज्ञान को कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और क्या असत्य ज्ञान आया? कि मैं मम्मी हूं और ये पढ़ता नहीं है। सारी दुनिया की मां हो, हेलो बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं, बचपन से आपका जन्म हुआ तो मां बन गए थे? नहीं, आप बने मां। मैं पति, मैं आज सिंगल हूं, कल शादी होगा तो मेरा टाइटल चेंज होगा, मैं पति हूं, परसों बच्चा पैदा होगा तो मैं पिता हूं, उसका भी बच्चा पैदा होगा तो मैं दादू हूं। चेंज हो रहा है जी, रोल चेंज हो रहा है, और हम इतने रोल कॉन्शियस में अटके हुए हैं। मेरा नहीं सुनता, मैं कौन? जोर से बोलिए, आत्मा नहीं बोलिए, पूरा बोलिए, शांत स्वरूप आत्मा। शांत स्वरूप आत्मा अर्थ वो सत्य है, शांति इजी है, उसकी वजह से मम्मी का बोल गुड है। मैं प्यार से बच्चे को बोलूंगी क्योंकि मुझे शांति पर भरोसा है, प्यार में भरोसा है। वो पढ़ नहीं रहा है ना, हमने एक बार, दो बार, दस बार प्यार से बोला, प्यार में, मेरे प्यार में, मेरे बोल में, मेरे शांति में मेरा भरोसा नहीं है, फिर मैं गुस्सा कर रहा हूं। क्यों गुस्से पे आ रहा हूं? क्योंकि इस पर भरोसा है ज्यादा, मां के रोल पे। बुरा मत मानिए, आप मां नहीं हैं, शांत स्वरूप आत्मा है, मां का दो बच्चों के लिए रोल निभा रही हूं, खत्म। ये है सत्य ज्ञान। आप बिजनेसमैन नहीं है, शांत स्वरूप आत्मा है, ये कपड़े की दुकान का मैं मालिक हूं, खत्म। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, वहीं तो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा तो चढ़ रहा है बीपी। सत्यता में आइए, शांत हूं, हैंडल करूंगा इसको गुड तरीके से, आसान तरीके से। वो आसान तरीका आएगा आपको मेडिटेशन में। हर व्यक्ति को जो जो मेडिटेशन करता है ब्रह्मा कुमारी, उसके जीवन का अनुभव सुनो, पता नहीं कहां कहां से ऐसे चमत्कार होते हो, आसानी से काम हो जाता है, लगता नहीं है होगा, लेकिन क्रोध नहीं, चिंता नहीं, ठीक है? हो सकता है, हो सकता। बस एक उदाहरण दे देता हूं, मम्मियों का तो मैंने बहुत सुना दिया, पप्पाओं का थोड़ा सुना देता हूं, बैलेंस हो जाएगा। हमारे पति देव पिताएं यहां जो बैठे हैं, अब घर जाते हैं, आपको कल शाम के 7 बजे तक क्या करना है? दोनों हाथ की उंगली ऐसे करिए, हाँ, ओटो के किनारे रखिए, ऊपर की ओर धक्का लगाइए। हाथ से नहीं करना, अंदर से खुश रहना। अब हमारे पास आज की बात नहीं है, आप जब अपने घर में जाएंगे, आप लोग शाम को पहुंचे खाना खाने के लिए, मैडम ने खाना बनाया, दाल रोटी चावल सब्जी, मैं पति, आप पति देव, रोटी का टुकड़ा तोड़ करके सब्जी, आलू गोभी की सब्जी भी मिला के मुख में रखा, इतना नमक। तो पति देवों, आपको क्या करना है?
और पत्नी को बुलाना, सुनती हो इधर आओ। वो किचन से बोलेंगी क्या लेकर आऊं, कुछ नहीं चाहिए बस तुम आ जाओ। रोटी लाऊं क्या, नहीं चाहिए सब्जी, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बाजू में खड़े होकर बोले हाँ बोलिए, तो पता आपको क्या करना है, आत्मविश्वास, किडनी विश्वास, लिवर विश्वास, धन विश्वास, नौकरी विश्वास, बुद्धि, ऐसा कोई शब्द नहीं है, एक ही शब्द है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से हाथ को ऐसे नहीं करना, मुस्कुराना, आलू गोभी की नमक वाली सब्जी का कटोरा हाथ में उठाना, पत्नी की आंखों में देखना, अंग्रेजी में मैं बोल देता अब अपनी मातृभाषा में बोलना, वाइफ को देखते हुए कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा, परेशान नहीं होगा। तो कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं हमारी बहने। एक बार मैं कार्यक्रम कर रहा था, वो माताजी ने आके कहा गिरीश भाई कल भी यही वाला क्लास कराना। मैंने कहा कल क्यों कराऊं वही वाला, बोला ये वाला एक्सपीरियंस जरूर सुनाना, नमक वाला। मैंने कहा अरे बोल दिया आप क्यों सुनाओ, बोला कल मैं अपने पति को लेकर आऊंगी उसको ठीक है कुछ भी हो जाए सदा मुस्कुराते रहे, कुछ भी। अगर गांधी जी नमक आंदोलन करके 239 माइल्स दांडी यात्रा करके नमक आंदोलन करके स्वराज्य भारत, और मैं पति आप पति इस उम्र में इतने अनुभव इतने पढ़े लिखे, नमक के कारण एक व्यक्ति पर क्रोध कर रहे वो भी पत्नी पर, क्या जीवन है। सीधे बैठ के एक मिनट मेडिटेशन करेंगे, आपसे नम्र निवेदन है कल सुबह 4 बजे मेडिटेशन, सत्य को महसूस करने के लिए। आज जल्दी सो जाइए, थोड़ा इधर उधर के कामों को जल्दी निपटाइए, और कुछ काम तो है नहीं, खाना तो बनाना नहीं है, जल्दी जल्दी व्यर्थ बातें, घर में फोन, उनको बोलो कल फोन कर लूंगी, रखो अनुभव करो, यहां आए हैं आप, प्लीज सत्य, सत्य के आधार, मैं आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, आत्मा के गुण सत्य, उसको अनुभव करना हर पल सत्य और पॉसिबल है, कैसे भी दुनिया हो 100%। ऐसी दुनिया की स्थापना हम और आप मिलके करेंगे संकल्प शक्ति से, हल्के होकर के बैठे आराम की स्थिति में, पूरा ध्यान भ्रकुटी के बीच, एक चमकते हुए सितारे को देखें, ये मैं हूं सदा हूं, ये चेहरा जो मुझे दिखता है, ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, अगले जन्म में कोई दूसरा शरीर, नए शरीर में जन्म लेना और वो शरीर छोड़ देना, ये तो जीवन का सत्य चक्र चलता रहता है, लेकिन मैं कभी नहीं मरता, अविनाशी सत्ता हूं, बहुत शुद्ध हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, खुशी शांति प्रेम इजी है मेरे लिए अनुभव करना, विपरीत परिस्थितियों में विपरीत लोगों के बीच मेरा मन शांत रहना सहज है, क्योंकि मैंने जान लिया मुझ आत्मा का स्वाभाविक गुण शांति है, जब चाहूं जितना समय चाहूं शांति की अनुभूति कर सकता हूं। कितना आसान है मानव जीवन, कितना अच्छा है मानव जीवन, सत्यता के आधार पर, भगवान का, निराकार परमपिता शिव बाबा का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये सत्य ज्ञान दिया। अभी मेरा मन एकदम शांत है, कोई चिंता नहीं, हमने कितना एंजॉय किया यहां ये शांतिवन में, हर पल हर चीज को हम एंजॉय कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं, भोजन हो, क्लास हो, मेडिटेशन हो, कमरे में सोना हो, कितना इजी है यहां पर। ऐसा ही मुझे अपने घर में भी अनुभव करना है। परमात्मा का, ब्रह्मा कुमारी संस्था का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस शांति की स्थिति में धीरे से अपनी आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ को अच्छी तरीके से रब करें, शांति के प्रकंपन को महसूस करें और माथे के ऊपर, आंखों के ऊपर, गाल में, सब जगह शांति। सबने फेयर एंड लवली लगा लिया, सदा फेयर और सदा लवली। थैंक यू। आप अपने परिवार सहित आप
थैंक यू सो मच,
आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लाभप्रद रहें, बहुत समृद्ध रहें, सदा मुस्कुराते रहें। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू गिरीश भाई को, और इसी सत्य ज्ञान को हमारे जीवन में लाकर हमारा जीवन बहुत सहज, बहुत सफल और बहुत खुशहाल बनाएंगे, है कि नहीं।